अक्षय बेटा, ये आपके सर पर क्या हुआ?
दोनों घर की चौखट पर पहुंचे ही थे कि बहू के स्वागत को सामने खड़ी रूपाली जी की नज़र अक्षय के सर पर लगी बैंडेज पर पड़ी। उन्होंने घबराते हुए सवाल किया,
कुछ नहीं है मम्मी, बस छोटी सी चोट है, इतना घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अक्षय ने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया।
अक्षय ने तो उन्हें शांत करने की कोशिश की थी, पर चोट सुनते ही वो परेशान हो गई। आपको चोट कैसे लग गई? जब गए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे और लौटे हैं तो खुद को घायल किया हुआ है।
माँ का दिल बच्चे के जख्म देखकर ही व्यापन हो गया था। जो सवाल उन्होंने किया वही अभिजीत जी और अन्वय के मन में भी था। अभिजीत जी तो चुप रहे, पर अन्वय ने तुरंत ही सवाल किया, क्या हुआ भैया, ये चोट कैसे लग गई आपको?
ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस लौटते हुए एक पागल इंसान एकदम से गाड़ी लेकर सामने आ गया। एक्सीडेंट से बचने के लिए मैंने ब्रेक लगाई और उन्हीं सब में ये जरा सी चोट लग गई।
अक्षय ने शांत स्वर में आम से अंदाज में सब संक्षिप्त में बता दिया था। उसने उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश भी की थी कि वो ठीक है, पर एक्सीडेंट का सुनकर ही तीनों लोगों के होश उड़ गए थे।
अभिजीत जी और अन्वय तो परेशान हो गए, पर रूपाली जी का तो विलाप शुरू हो चुका था।
लाख लाख शुक्र है भगवान का, तो इतना बड़ा संकट आपके सर से टल गया और आपको ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हमारी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी ही लुट जाती, बर्बाद हो जाते हम।
अक्षय की चिंता और अपना दुख प्रकट करते हुए अब उनके शब्दों में रोष खुलने लगा था।
कितनी बार हमने आपको कहा था कि इन्हें लेने मत जाइए, जैसी अपने भाई के संग गई थी वैसे ही अगर आना है तो उसके साथ आ जाए, और नहीं भी आती तो हमें कोई परवाह नहीं थी। इतने दिनों काम का बहाना लगाकर मायके में आराम से बैठी ही थी, अब भी वहीं रहती, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। हमारी बातों की अब इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही, और देख लीजिए हमारी बात न मानने का अंजाम। गए थे तो सही सलामत थे और इसे लेकर लौटे तो ये हाल है आपका। पत्नियां तो सावित्री बनकर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को छीन लाती हैं, और एक ये हैं जो आपके जान को आफत बन गई। शादी को चंद महीने हुए नहीं और इनके कारण आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। जाने किस मनहूस घड़ी में हमने इस लड़की से आपका रिश्ता जोड़ा था। पत्नी का कोई सुख तो आपको है नहीं और आज इनके कारण आपकी जान खतरे में पड़ गई। हमने तो बहू को लाने भेजा था और यहाँ घर के बेटे के प्राण संकट में पड़ गए।
रूपाली जी ने हर बात को अहाना से जोड़ दिया। ऐसे ही जाने और कितनी बातें वो सुना चुकी थी, अहाना को बेवजह ही कोसे जा रही थी। बिना किसी दोष के जाने क्या क्या कह दिया था उसने। सब चकित से बस उन्हें देखते ही रह गए। खुद अहाना और अक्षय उनकी बातें सुनकर हैरान थे। कुछ देर तक तो अक्षय शौक की स्थिति में उनकी बातें सुनता रहा, पर फिर जब अहाना के बारे में और गलत बातें उससे बर्दाश्त ना हुई तो आखिर उसने अपनी खामोशी तोड़ी। बेयकीनी से उन्हें देखते हुए परेशान सा बोला,
मम्मी ये क्या कह रही हैं आप, वो बस एक हादसा था जो टल गया। जो भी हुआ उसमें अहाना का क्या दोष जो आप उन्हें इतना कुछ सुनाई जा रही हैं।
अक्षय का अहाना की पैरवी करना उन्हें जरा भी रास न आया। गुस्से से उनका खून खौल उठा। घृणा भरी नजरों से अहाना को घूरते हुए रोषपूर्ण लहजे में कहा, हमारी आज्ञा को ठुकरा कर इसी मनहूस लहती को लाने गए थे ना तुम, और देखो क्या हो गया। वो तो भगवान की कृपा से संकट टल गया, हमारी प्रार्थनाओं और भक्ति का फल दिया उन्होंने हमें, जो आपको कुछ नहीं हुआ, वरना अगर आज आपको कुछ हो तो हम क्या करते। एक बार फिर बिना किसी दोष के आहाना पर आरोप लग चुके थे। अक्षय ने अब बेहद शांत व गंभीर स्वर में उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं आपका डर चिंता सब समझता हूँ, पर आप बेवजह ही सबके लिए आहाना को दोष देती जा रही हैं। जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो कार वाला रैश ड्राइविंग कर रहा था और एकदम से हमारी गाड़ी के सामने आ गया था। आपने बेवजह ही न जाने इतनी देर में क्या क्या सुना दिया उन्हें, उन्हें मनहूस तक कह दिया, जबकि हो सकता है कि वो लकी साबित हुई हो मेरे लिए और उनके कारण ही इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया और ज्यादा चोट नहीं आई मुझे। लो जी, माँ अपनी भक्ति को सराह रही थी और बेटे ने सारा क्रेडिट ही बीवी को दे डाला। सो लगी तो गई थी रूपाली जी, सर से पांव तक जल उठी थी वो, पर इससे पहले कि वो अपने मुंह से आहाना के लिए और जहर उगलती अभिजीत जी की कर्कश आवाज वहां गूंज उठी, रहने दीजिए रूपाली जी, अब आपको और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। बहू घर आई और क्या स्वागत किया है आपने उस मासूम बच्ची का, बेवजह इतना कुछ सुना दिया उन्हें और अब भी आपके दिल को शांति नहीं मिली है जो अपने मुंह से उनके खिलाफ और जहर उगलना चाहती हैं। आज के लिए इतना बस कर दीजिए, बहुत ज्यादा बोल गई हैं आप, घर की लक्ष्मी के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया आपने, पर हम चुप रहे, लेकिन अब अपने घर की लक्ष्मी का और अपमान हम सहन नहीं करेंगे। उनके शब्दों और आंखों में चेतावनी थी जिसे समझते हुए रूपाली जी खींच उठी। इस घर में अब हमारी सुनता ही कौन है, हम सच कहते हैं तो हमारी बात सुनकर सबको बुरा लगता है, जब एक दिन ये लड़की सब बर्बाद कर देगी तब आप लोगों को समझ आएगा कि हम सही कह रहे थे, ये लड़की अक्षय की पत्नी और इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं थी। अभिजीत जी ने गुस्से भरी नजरों से उन्हें घूरा तो वो फुंकारते हुए गुस्से में वहां से चली गई। उनकी बातों ने पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया था, जहां अब तक सब खुश व एक्साइटेड थे वहीं अब सबके चेहरों पर बादल छाए हुए थे। बेटा आप दोनों ठीक है ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये वो सवाल था जो माँ होने के नाते रूपाली जी को पूछना चाहिए था, पर उन्हें तो आहाना को कोसने से ही फुर्सत ना थी। अभिजीत जी ने चिंतित निगाहों से दोनों को देखते हुए सवाल किया। अक्षय ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया, नहीं पापा, बस सर पर ही जरा सी चोट लगी है। बहू आप तो ठीक है, आपको भी तो कहीं चोट नहीं लगी? उन्होंने बड़े ही प्यार व अपनेपन से आहाना से सवाल किया। अपने लिए इतनी जहर बुझी बातें सुनकर आहाना का गला भर आया था तो उसने बस इनकार में सर हिला दिया। बहू रूपाली जी की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनका स्वभाव ही ऐसा है, कुछ भी करने या बोलने से पहले सोच सोचती नहीं है और अक्षय से तो बहुत प्यार करती है, इसलिए परेशानी में इतना कुछ बोल गई। अभिजीत जी रूपाली जी की करतूतों पर पर्दा डाल रहे थे, उनकी उस हरकत को जस्टिफाई कर रहे थे जो उन्हें खुद पसंद नहीं आई थी, पर नई बहू के मन में सास की गलत छवि भी नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए बड़े ही प्यार व अपनेपन से उसे समझा रहे थे। हाहाना ने पलट कर कोई जवाब न दिया, बस सर झुकाए वही सहमति में सर हिला दिया। इतने में अन्वय अपने बेपरवाह अंदाज में बोल पड़ा, अरे भाभी चिल मारिए, मम्मी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया कीजिए, या एक काम करिए सुनिए ही मत। आजकल खुद से ही चिड़ी हुई हैं, बेवजह किसी पर भी भड़क जाती हैं, उन्हें ज्यादा सीरियस लेकर दुखी या उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। उसने कोशिश तो पूरी की थी पर आहाना की खोई मुस्कान ना लौटा सका। अभिजीत जी ने ही दोनों में कुलदेवता का आशीर्वाद लेने को कहा, फिर आहाना को आराम करने का कहकर कमरे में भेज दिया। आहाना भी चुपचाप वहां से चली गई। क्या स्वागत हुआ था आज यहाँ उसका, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी पलकों पर ठहरे आंसू लुढ़क कर उसके गालों को भिगो गए।